कल्पना की जा सकती है कि कोई व्यक्ति पूरे 20 साल का लंबा वनवास काट चुका है और मतलब वो अंततः अपने घर लौट रहा है, अपनी मातृभूमि की ओर।
हाँ, और वो भी बहुत सफल होकर, है ना?
बिल्कुल, उसके पास अपार संपत्ति है, एक बड़ा परिवार है, भविष्य की अनगिनत योजनाएं हैं, लेकिन घर के दरवाजे पर पहुंचने से ठीक पहले उसे एक खबर मिलती है जो मतलब उसकी नसों में खून जमा देती है।
क्षितिज पर उड़ती हुई वो धूल।
हाँ, धूल का एक बड़ा गुबार, और उस गुबार के बीच से वो इंसान आ रहा है जिसने 20 साल पहले उसे जान से मारने की कसम खाई थी, और वो अकेला नहीं आ रहा है, उसके साथ पूरे 400 हथियारबंद लोग हैं।
अरे बाप रे, 400 लोग, ये कोई छोटी बात नहीं है।
बिल्कुल नहीं, और ये कोई काल्पनिक कहानी भी नहीं है, ये प्राचीन इतिहास के सबसे तनावपूर्ण क्षणों में से एक है। तो आज के इस गहन अध्ययन में हम डॉक्टर केनेथ मैथ्यूज के उत्पत्ति की किताब यानी जेनेसिस के सत्र 19 के स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से अध्याय 32 और 33 पर केंद्रित है।
और इस पूरी चर्चा का मिशन ये समझना है कि कैसे एक भयानक व्यक्तिगत संकट, मतलब वो मृत्यु का भय, किसी इंसान के जीवन में ऐसा बदलाव ला सकता है जो उसकी पूरी पहचान को ही जड़ से बदल दे।
सही कहा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या हम थोड़ी पृष्ठभूमि समझ सकते हैं?
बिल्कुल। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वो याकूब है। याकूब कनान लौट रहा है। कनान वह उसके पूर्वजों को प्रतिज्ञा में दी गई भूमि है। उसने अपने ससुर लाबान के साथ एक बहुत ही लंबा और मुश्किल समय बिताया है,
और अब उनके बीच शांति है ना?
हाँ, एक तरह की शांति स्थापित हो चुकी है। बाहरी तौर पर देखने पर लगता है कि याकूब बहुत सफल है, उसके पास ढेरों सेवक हैं, मवेशियों के बड़े बड़े झुंड हैं, लेकिन ये सारी सफलता उस अतीत के साये के सामने कुछ भी नहीं है।
वो साया जो 400 आदमियों के साथ उसकी तरफ पड़ रहा है।
20 साल पहले जब उनके पिता इसहाक अपनी मृत्युशैया पर थे, तब याकूब ने एक बहुत बड़ा धोखा किया था।
जन्म सिद्ध अधिकार वाला धोखा।
हाँ, उसने चालाकी से अपने अंधे पिता को भ्रमित किया और वो विशेष आशीर्वाद छीन लिया जो असल में बड़े भाई एसाव को मिलना चाहिए था,
और इसी वजह से एसाव ने उसे मारने की कसम खाई थी।
सही कहा। उस धोखे की कीमत ये थी कि एसाव ने खुलेआम कह दिया था कि पिता की मृत्यु का शोक खत्म होते ही वो याकूब की हत्या कर देगा।
चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं सुनने वालों के लिए। ये स्थिति कितनी भयानक रही होगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई 20 साल बाद अपने हाई स्कूल के किसी रीयूनियन में जा रहा हो, ये सोचकर कि अब सब कुछ सामान्य हो गया होगा।
हाँ, समय घाव भर देता है ऐसा सोचकर।
बिल्कुल, लेकिन वहां पहुंचने से पहले पता चले कि वो इंसान भी आ रहा है जिसने आखिरी बार जान से मारने की धमकी दी थी, और वो एक पूरी फौज लेकर आ रहा है।
मतलब ये ऐसा क्षण है जहां जीवन और मृत्यु एकदम आमने सामने खड़े हैं।
हाँ, ऐसे में इस कहानी के सबसे मशहूर हिस्से पर जाने से पहले ये देखना जरूरी है कि याकूब का दिमाग उस समय कैसे काम कर रहा था, मतलब वो इस आने वाले तूफान के लिए क्या रणनीति बना रहा था।
देखिए, याकूब की मानसिक स्थिति इस समय चरम भय से भरी हुई है, लेकिन घर वापसी के रास्ते में एक अजीब घटना होती है। याकूब का सामना स्वर्गदूतों के एक समूह से होता है।
अच्छा?
हाँ, और वो उस स्थान का नाम महनाइम रखता है। प्राचीन हिब्रू में इसका अर्थ है दो शिविर। ये एक बहुत गहरा संकेत था कि ईश्वर उसके साथ है, एक तरह का सुरक्षा घेरा है,
एक आध्यात्मिक आश्वासन।
बिल्कुल, लेकिन विडंबना देखिए, जैसे ही उसे पता चलता है कि एसाव 400 लोगों के साथ आ रहा है, याकूब वो सारा आश्वासन भूल जाता है। डर उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है
और उस घबराहट में वो अपनी पुरानी फितरत पर लौट आता है। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि याकूब अपने पूरे समूह को, अपनी पत्नियों, बच्चों और मवेशियों को दो हिस्सों में बांट देता है।
हाँ, उसकी सोच बड़ी ही ठंडी और व्यवहारिक हो जाती है
कि अगर एसाव एक शिविर को नष्ट कर दे तो कम से कम दूसरा बचकर भाग निकलेगा, और मतलब वो उपहारों की एक पूरी श्रृंखला तैयार करता है, मवेशियों के कई झुंड एक के बाद एक एसाव की ओर भेजता है,
एक के पीछे एक, लहरों की तरह।
हाँ, और हर सेवक को रटाया गया है कि जब एसाव पूछे तो कहना है ये आपके दास याकूब की ओर से मेरे स्वामी एसाव के लिए उपहार है।
बिल्कुल,
लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। क्या ये रणनीति ये नहीं दिखा रही कि याकूब बिल्कुल नहीं बदला है? वो फिर से वही पुराना छलिया इंसान लग रहा है जो रिश्वत देकर अपने भाई का गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा है।
सतही तौर पर देखने से ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। मतलब याकूब का इतिहास ही धोखे का रहा है तो ये संदेह स्वाभाविक है। लेकिन डॉक्टर मैथ्यूज के विश्लेषण में एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर बताया गया है। वे इसे महज एक रिश्वत या हेरफेर नहीं मानते।
सच में? तो वो इसे क्या मानते हैं?
वे इसे सच्चे पश्चाताप की शुरुआत मानते हैं। इसका प्रमाण उस प्रार्थना में मिलता है जो याकूब इस संकट के बीच करता है। अध्याय 32 में याकूब पहली बार ईश्वर के सामने पूरी तरह से टूट जाता है।
वो अपनी अयोग्यता स्वीकार करता है ना?
हाँ, वो कहता है कि वो ईश्वर की किसी भी कृपा के योग्य नहीं है। ये वो याकूब नहीं है जो अपनी बुद्धि पर घमंड करता था। वो स्पष्ट रूप से मान लेता है कि वो डर गया है, और वो सिर्फ अपनी जान नहीं मांग रहा, उसे अपनी पत्नियों, बच्चों और ईश्वर के उस वादे की चिंता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए था।
मतलब ये प्रार्थना उसके भीतर आ रहे बदलाव को दिखाती है। वो अपने डर को छिपा नहीं रहा है।
और यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि मूल हिब्रू भाषा में शब्दों का एक बहुत ही सुंदर खेल है। हमने महनैम शब्द की चर्चा की, जिसका अर्थ है दो शिविर।
हाँ, महनैम।
याकूब जो उपहार एसाफ को भेज रहा है उसके लिए मूल ग्रंथ में मिन्हा शब्द का प्रयोग हुआ है। मिन्हैम और मिन्हा सुनने में बहुत समान लगते हैं, लेकिन प्राचीन संदर्भों में मिन्हा का मतलब सिर्फ तोहफा नहीं होता।
तो इसका धार्मिक अर्थ क्या है?
इसका उपयोग अक्सर प्रायश्चित और सुलह की भेंट के लिए होता था। जब कोई किसी का बड़ा नुकसान करता था तो वो मिन्हा के जरिए उस अपराध का प्रायश्चित करता था। याकूब रिश्वत नहीं दे रहा, वो वास्तव में उस 20 साल पुराने अपराध की भरपाई करना चाहता है। वो सुलह मांग रहा है।
ओह, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इसका अर्थ ये हुआ कि भौतिक दुनिया में वो जो कुछ कर सकता था वो कर चुका है। रणनीति बना ली, संपत्ति दाव पर लगा दी, प्रार्थना कर ली,
सब कुछ कर लिया।
लेकिन कथा अब उस मोड़ पर आती है जहां भौतिक रणनीतियां काम नहीं आती। एसाफ का सामना करने से ठीक एक रात पहले याकूब अपने परिवार को यब्बोक नदी के पार भेज देता है, और वहां उस घने अंधेरे में वो बिल्कुल अकेला रह जाता है।
अकेला और डरा हुआ।
हाँ, और तभी अचानक एक अजनबी आदमी वहां प्रकट होता है और बिना किसी चेतावनी के याकूब के साथ पूरी रात कुश्ती करने लगता है।
ये दृश्य प्राचीन साहित्य के सबसे रहस्यमय क्षणों में से एक है। देखिए, याकूब ने हमेशा इंसानों से मुकाबला किया था, भाई से, पिता से, ससुर से, और हमेशा बुद्धि से जीता था।
लेकिन ये कुश्ती अलग थी,
बहुत अलग। बाद में होशे नामक ग्रंथ के अनुसार ये स्पष्ट होता है कि ये अजनबी वास्तव में एक देवदूत था, और उत्पत्ति की किताब के कुछ अन्य वर्णनों की तरह ये स्वयं ईश्वर का एक मानवीय रूप था।
मतलब वो सीधे रचयिता के साथ कुश्ती लड़ रहा था।
बिल्कुल, उस सन्नाटे में वो स्वयं ईश्वर के साथ उलझा हुआ था।
और यहाँ शब्दों का एक और अद्भुत खेल है जो हमने स्रोतों में देखा। याकूब, यब्बोक नदी, और हिब्रू का शब्द यबक, जिसका अर्थ है कुश्ती लड़ना। ये तीनों शब्द मूल भाषा में एक जैसे गूंजते हैं।
हाँ, जैसे इंसान, जगह और संघर्ष तीनों मिलकर एक हो गए हों।
लेकिन यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरे दिमाग में एक तार्किक सवाल आ रहा है। अगर वो अजनबी वास्तव में सर्वशक्तिमान ईश्वर था, तो उसे याकूब जैसे साधारण इंसान को हराने में पूरी रात क्यों लग गई?
ये सवाल बहुत आम है।
मतलब ईश्वर तो ब्रह्मांड की शक्ति है, वो तो पलक झपकते याकूब को हरा सकता था, फिर ये 8-10 घंटे की कुश्ती क्यों?
ये सीधे तौर पर इस बात की व्याख्या करता है कि ईश्वर इंसानों के साथ कैसे व्यवहार करता है। हमारे स्रोतों में डॉक्टर मैथ्यूज इसे ईश्वर के छिपे होने और रहस्य के रूप में समझाते हैं।
छिपे होने का मतलब?
अगर ईश्वर अपनी पूरी महिमा और असीमित शक्ति के साथ वहाँ प्रकट होते तो याकूब एक सेकंड में भस्म हो जाता।
प्राचीन मान्यताओं में ये स्पष्ट था कि कोई भी इंसान ईश्वर के पूर्ण स्वरूप को देखकर जिंदा नहीं रह सकता।
अच्छा, तो ये एक तरह का बफर था, एक सुरक्षा सीमा। बिल्कुल, ईश्वर जानबूझकर अपनी शक्ति को सीमित करते हैं ताकि याकूब की जान न जाए, और साथ ही उसे ये मौका मिले कि वो अपनी पूरी हताशा, जिद और भीतर की उथल पुथल को बाहर निकाल सके।
ये बहुत ही गहरा विचार है। ईश्वर उसे लड़ने की जगह दे रहे हैं।
हाँ, ताकि वो महसूस करे कि उसकी अपनी ताकत अंततः कितनी सीमित है।
और ये संघर्ष एक बहुत ही नाटकीय मोड़ पर खत्म होता है जब सुबह होने लगती है और अजनबी देखता है कि याकूब हार नहीं मान रहा, तो वो क्या करता है?
वो सिर्फ एक प्रहार करता है।
हाँ, वो सिर्फ याकूब के कूले की नस को छूता है या मारता है, और वो नस खिसक जाती है। अगर हम शारीरिक पहलू देखें तो कूल्हे का जोड़ शरीर का सबसे मजबूत जोड़ है, ये भागने की क्षमता देता है।
और याकूब की पूरी जिंदगी भागने में गुजरी थी।
बिल्कुल, एहसास से भागना, लाभान से भागना, लेकिन इस एक प्रहार के बाद उसकी भागने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वो भयानक दर्द में है, अपाहिज हो चुका है, फिर भी वो अजनबी को पकड़कर कहता है, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
यहीं पर इस घटना का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अगर कोई पूछे कि इस कुश्ती में जीता कौन,
तो क्या जवाब होगा?
ये बहुत सीधा नहीं है। एक नजरिया ये है कि याकूब जीता, क्योंकि उसने जिद नहीं छोड़ी और आशीर्वाद पा लिया।
लेकिन दूसरी तरफ
वास्तविक अर्थों में ईश्वर की जीत हुई, क्योंकि याकूब का वो अहंकार, उसकी वो आत्मनिर्भरता जिस पर वो 20 सालों से घमंड कर रहा था, वो हमेशा के लिए टूट गई। कूल्हे की चोट का मतलब था कि अब वो अपनी ताकत पर खड़ा नहीं रह सकता था। उसे अब पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर होना था।
मतलब हार मानकर ही सच्ची जीत मिलती है।
बिल्कुल, आध्यात्मिक दुनिया का ये बहुत बड़ा सच है कि इंसान की सच्ची जीत तब शुरू होती है जब उसका अहंकार पूरी तरह हार मान लेता है।
सुबह की पहली किरण के साथ जो व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा था, वो रात वाले व्यक्ति से बिल्कुल अलग था। वो शारीरिक रूप से घायल था, लेकिन उसकी पहचान पूरी तरह बदल चुकी थी।
हाँ, क्योंकि कुश्ती के अंत में उस अजनबी ने याकूब से एक बहुत बुनियादी सवाल पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है?
सिर्फ नाम?
देखिए, प्राचीन मध्य पूर्वी संस्कृति में नाम पूछना सिर्फ जानकारी लेना नहीं था, नाम किसी व्यक्ति के पूरे अस्तित्व, चरित्र और वास्तविकता को दर्शाता था। जब ईश्वर ने नाम पूछा तो वे असल में एक स्वीकारोक्ति मांग रहे थे।
ओह, कि वो खुद माने कि वो कौन है।
हाँ, याकूब को कहना पड़ा, मेरा नाम याकूब है। याकूब जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धोखेबाज या एड़ी पकड़ने वाला।
ये बहुत मुश्किल रहा होगा, अपनी सबसे गहरी और अंधकार में सच्चाई को स्वीकार करना।
जिसने मान लिया कि हाँ, मैं वही धोखेबाज हूँ जिसने अपने परिवार को छला था। और जैसे ही वो ये सच्चाई स्वीकार करता है, उसे एक नई पहचान मिलती है,
इसराइल।
बिल्कुल, अजनबी ने कहा कि अब से तुम्हारा नाम याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, जिसका अर्थ है वो जो ईश्वर के साथ संघर्ष करता है।
और इसके जवाब में याकूब ने उस स्थान का नाम पेनियल रखा, जिसका अर्थ है ईश्वर का चेहरा। उसने कहा कि मैंने ईश्वर को आमने सामने देखा है, फिर भी मेरी जान बच गई।
ये एक ऐसा अनुभव था जिसने उसके भीतर के डर को खत्म कर दिया। और इस घटना का प्रभाव सिर्फ याकूब तक सीमित नहीं रहा, ये एक स्थायी निशान बन गया।
हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा कि आज भी इजरायली लोग जानवरों के कूल्हे की नस से जुड़ा हिस्सा नहीं खाते हैं।
बिल्कुल, याकूब जीवन भर लंगड़ाकर चलता रहा। ये लंगड़ापन कमजोरी नहीं, आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक था। ये भोजन का नियम उनकी वंशावली का अनुस्मारक है कि उनकी नींव उस रात के संघर्ष में रखी गई थी।
तो इन सब का क्या मतलब है? हम देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। एक पूरे राष्ट्र की पहचान किसी महानता या पूर्णता पर आधारित नहीं है, उनकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति पर है जिसने ईश्वर के साथ संघर्ष किया और जो उस संघर्ष से एक स्थायी चोट लेकर बाहर आया।
इंसान की असली ताकत उसके टूटने और ईश्वर पर निर्भर होने में है।
बिल्कुल, अब इस नई पहचान और लंगड़ाती चाल के साथ याकूब को उस बाहरी डर का सामना करना था, एसाव और उसके 400 लोग।
ये इस पूरे आख्यान का चरम बिंदु है। सुबह हो चुकी है, याकूब नदी पार करता है, वो अपने परिवार को कतार में लगाता है, राहेल और यूसुफ सबसे पीछे। लेकिन यहाँ उसका नया रूप दिखता है, वो खुद पीछे नहीं छिपता,
वो सबसे आगे चलता है।
हाँ, अपनी नई लंगड़ाती हुई चाल के साथ वो सबसे आगे बढ़ता है
और वो 7 बार जमीन पर झुककर एसाव के पास पहुंचता है। ये तो प्राचीन समय में पूर्ण समर्पण का प्रतीक था, बिना शर्त माफी मांगने का तरीका।
और दूसरी तरफ से जो प्रतिक्रिया आती है वो चमत्कार से कम नहीं है।
एसाव दौड़कर आता है, वो हथियार नहीं उठाता बल्कि याकूब को गले लगा लेता है, चूमता है और दोनों भाई रोने लगते हैं।
20 साल का क्रोध उन आंसुओं में धुल जाता है।
जब याकूब उपहार देने की जिद करता है तो एसाव कहता है, मेरे पास बहुत है मेरे भाई। लेकिन याकूब जोर देता है और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है।
हाँ, वो कहता है, तुम्हारा चेहरा देखना ऐसा है जैसे ईश्वर का चेहरा देखना।
ये इस पूरी कथा का सार है।
ये एहसास अकल्पनीय रहा होगा, जैसे आप किसी भयानक तूफान की उम्मीद कर रहे हो और अचानक सामने वाला आपको गले लगा ले, वो राहत।
अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो चेहरे का यह संदर्भ बहुत गहरा है। रात को याकूब ने पेनियल में ईश्वर का चेहरा देखा था, वहां उसे अनुग्रह मिला था,
और अब सुबह वो उसी अनुग्रह को अपने दुश्मन अपने भाई के चेहरे में देख रहा है।
बिल्कुल, डॉक्टर मैथ्यू स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर के साथ हुई उस अंधेरी मुलाकात ने ही वास्तव में एसाव के साथ इस शांतिपूर्ण मिलन का रास्ता साफ किया था। इसके बाद दोनों शांति से अलग होते हैं। याकूब शेकेम पहुंचता है और वहां एक वेदी बनाता है। वह उसका नाम रखता है एल एलोहे इज़राइल, परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर। अब ईश्वर सिर्फ उसके पिता का नहीं, उसका अपना ईश्वर है।
इस पूरी यात्रा में एक स्पष्ट पैटर्न उभरता है। अब्राहम, इसाक और याकूब तीनों पीढ़ियों के जीवन में जब भी बड़ा संकट आता है तो वो उनकी आस्था को पक्का कर देता है। याकूब चालाकी पर निर्भर इंसान से बदलकर ईश्वर की कृपा पर निर्भर इंसान बन गया।
और यही बात इस कहानी को आज भी प्रासंगिक बनाती है। सुनने वालों के लिए ये बहुत मायने रखता है। हम सभी की जिंदगी में कोई ना कोई एसाव होता है,
पुरानी गलतियां या वे लोग जिनसे हम डरते हैं।
हाँ, यह कहानी दिखाती है कि बाहरी संकटों को सुलझाने के लिए हमें पहले खुद को बदलना पड़ता है।
जब तक हमारा आंतरिक अहंकार नहीं टूटता, बाहरी दुनिया में सच्ची शांति नहीं मिल सकती।
बिल्कुल। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, अगर याकूब ने उस रात उस अंधेरे में ईश्वर के साथ वो संघर्ष नहीं किया होता, अगर वो उस चोट और उस आशीर्वाद के बिना सुबह एसाव के सामने जाता, तो क्या वो मुलाकात इतनी शांतिपूर्ण होती? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन के सबसे बड़े बाहरी टकराव तब तक नहीं सुलझ सकते जब तक कि हम अकेले में अपने भीतर उतरकर अपने अहंकार को तोड़ने वाली वो सबसे मुश्किल और अंधकारमय आध्यात्मिक लड़ाई न लड़ लें?